ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா சாப்டர் 4 வாஸ் நம்பர் 25. கிருபயா இன் அத்தியந்த ஹி பவித்ர சப்தம் கோ மேரி சாத் சாத் உச்சாரண கர்னே கா பிரயாஸ் கீஜியே. பகவான் கேத்தே ஹே, தைவமேவா பரியக்யம் யோகினாஹ பர்யுபாஸதே ப்ரஹ்மாஜ்ஞாவபரியக்யம் யக்கீனைவோபஜுவதி தைவமேவாபரியக்யம் யோகினஹ 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 பர்யுபாஸதே ப்ரஹ்மாஜ்ஞாவபரியக்யம் யக்கீனைவோபஜுவதி. சப்தோ கா அர்த் தைவம் ஏவனா ஏவா பரே. தைவம் மத்தப் தேவதாவும் கி பூஜா கர்னே மே, ஏவம் அர்த்தாத் இஸ் பிரகார், அப்பரே யானி அன்ய, யோகினஹ அப்பரே யக்யம், யக்யம் கா மத்தப் ஹோதா ஹை யக்ய கோ, யோகினஹ பர்யுபாஸதே, யோகினஹ யானி யோகிஜன், பர்யுபாஸதி மத்தப் பலி பாந்தி பூஜா கர்தே ஹை. உஸ்கே பாத் ப்ரஹ்மாஜ்ஞாவபரே யக்யம், ब्रह्म मतलब परम सत्य का अग्नो मन, अग्नि में अपरे मन अन्य यज्ञ मन इस यज्ञ को. आगे यज्ञम यज्ञ नैवोपजुहते, यज्ञम का मतलब होता है यज्ञ को, यज्ञेन यानी के यज्ञ से, एव यानी इस प्रकार, उपजुहते यानी अर्पित करते हैं. अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा. श्रील प्रभुपाद की जय हो. अनुवाद, कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा. श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन होता है वह पूर्ण योगी है. किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ परम ब्रह्म या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं. इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं. विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियां केवल बाह्य वर्गीकरण है. वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान को प्रसन्न करना और विष्णु की को यज्ञ भी कहते हैं. विभिन्न प्रकार के यज्ञों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है, सांसारिक द्रव्य के लिए यज्ञ यानी द्रव्य यज्ञ तथा दिव्य ज्ञान के लिए यज्ञ यानी ज्ञान यज्ञ. जो कृष्ण भावना भावित हैं उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए ही होती है. किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं वे इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपत्ता की आहुति देते हैं, किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी हैं, वे निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। देवतागण ऐसी शक्तिमान जीव आत्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड को ऊष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाश प्रकाशित रखने के जैसे भौतिक कार्यों की देखरेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं, वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग बहुवीश्वरवादी कहलाते हैं, किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूप को अनित्य मानते हैं, वे ब्रह्म की अग्नि में अपने आप की ही आहुति दे देते हैं और इस प्रकार ब्रह्म के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगा देते हैं। दूसरे शब्दों में सकाम कर्म में भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं, किंतु निर्विशेषवादी परब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। निर्विशेषवादी के लिए यज्ञाग्नि ही परब्रह्म है, जिसमें आत्मस्वरूप का विलय ही आहुति होता है। किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है। इस तरह इसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्मस्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वह परम योगी है, किंतु उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता। इसी प्रकार का श्लोक है आगे भी, जिसमें विभिन्न यज्ञों के विषय बता रहे हैं। भगवान कहते हैं, श्रोत्रादीनेन्द्रियाण्ये संयम संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति श्रोत्रादीनेन्द्रियाण्ये 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 संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति श्रोत्रादीनेन्द्रियाण्य श्रोत्रादीनेन्द्रियाण्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य याग्नी शुजुहति। शब्दों का अर्थ श्रोत आदि इंद्रियाणि अर्थात इंद्रिया अन्य यानी अन्य संयम अग्नि शुजुहति। संयम मतलब संयम की अग्नि यानी अग्नि में जुहति यानी अर्पित कर देते हैं। शब्द आदि विषयान अन्य शब्द आदि विषय यानी इंद्रिय तृप्ति के विषय को अन्य मन दूसरे इंद्रिया अग्नि शुजुहति इंद्रियों की अग्नि में यजन करते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। अनुवाद इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित ग्रस्त इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी का कह रहे हैं कि मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य अर्थात ब्रह्मचारी ग्रस्त वानप्रस्त तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त हैं। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है, अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु के देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूल आधार है, अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरे नामानुकीर्तनम अर्थात भगवान के यश का कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। वह सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है और उसकी श्रवण इंद्रिय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इस महामंत्र की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती है। इसी प्रकार से गृहस्त भी जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। यौन जीवन मादक द्रव्य सेवन और मांस आहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं, किंतु संयमित ग्रस्त कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्र तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित ग्रस्त उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाखया चक्षुरोन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं सद्विजातं सहगणरघुनाथवितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपीश गोपीका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। सप्तकाञ्चनं गौरङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानो सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभयस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भगवद्गीता मात की जय हो। भगवान ने अब यज्ञ के विषय में बताना प्रारंभ किया है। श्लोक नंबर 23 में जब भगवान ने बताया यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते, यानी कि जो यज्ञ रूप में जो कार्य करते हैं उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते। कैसे लीन हो जाते, क्यों? श्लोक नंबर 23 में भगवान ने बताया गत संगस्य मुक्तस्य, यानी कि किसी भी चीज में कोई संग नहीं है, किसी फल में कोई आसक्ति नहीं है। और वो आसक्ति कैसे समाप्त होती है? ज्ञानावस्थित चेतसा, क्योंकि जो चेतना है वो ज्ञान में स्थित हो जाती है। फिर वो कोई भी कार्य कर रहा है, क्यों कर रहा है? यज्ञायाचरतः कर्म, उसके सारे कर्म जो है वो ऑटोमेटिकली यज्ञ बन जाते हैं। और समग्र प्रविलीयते, वो सारे कर्म जो है वो पूर्णतया से विलीन हो जाते हैं। और श्लोक नंबर 24 में भगवान ने कल हमें बताया ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्मादौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्य ब्रह्म कर्म समाधिनम्। कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से तल्लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। ये गंतव्य तेन गंतव्य यानी कि उसे आध्यात्मिक, अब वो क्या होता है कि जब वो आध्यात्मिक स्थित हो जाता है तो संपूर्ण वस्तुएं आध्यात्मिक हो जाती हैं। कैसे? ब्रह्मार्पणम, ये जो अर्पण करता है वो आध्यात्मिक हो जाता है। ब्रह्म हविर यानी जो धृत जो घी होता है वो आध्यात्मिक हो जाता है। ब्रह्म अग्न अग्नि आध्यात्मिक हो जाती है। ब्रह्मणाहुतम यानी के जो अर्पित हो रहा है स्वाह कर रहे हैं वो भी ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, और उनका जो गंतव्य होता है उनका जो लक्ष्य मोक्ष जहाँ पर वो पहुंचेंगे वो भी आध्यात्मिक जगह होगी, और ब्रह्म कर्म समाधिना वो पूर्ण आध्यात्मिक में स्थिर हो जाते हैं। अब यहाँ पर भगवान ने एक जनरल यज्ञ के विषय में एक जनरल प्रिंसिपल बताया है, और आगे भगवान श्लोक नंबर 24 और 25 और 26 में जो आज हम पढ़ रहे हैं उसमें भगवान विविध प्रकार के यज्ञों के विषय में बता रहे हैं, कि उदाहरण दे रहे हैं भगवान के लिए कि किस किस प्रकार के यज्ञ होते हैं, कौन कौन से यज्ञ हो रहे हैं संसार में, वेदों के अनुसार हमें ना कौन कौन से यज्ञ लोग करते हैं, और वो बताते हैं भगवान पहले बताते हैं जैसे दो टाइप के लोग होते हैं, दैवमेवापरे यज्ञम, कुछ लोग क्या होते हैं दैवमेवापर यानी देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं, देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं, योगी ना पर उपासते, इस तरह से कुछ योगी लोग जो होते हैं वो यज्ञ करते हैं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, और दूसरे कौन से होते हैं ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम यानी दूसरे ब्रह्म के उपासक होते हैं, यानी कि वो देवी देवताओं को भी नहीं मानते, भगवान के किसी स्वरूप को नहीं मानते, ब्रह्म को मानते हैं, और ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम यज्ञेनेवोपजुहवति, फिर वो क्या करते हैं वो स्वयं को ब्रह्म में ब्रह्म पर ब्रह्म की रूपी अग्नि में आहुति दे देते, यानी कि वो क्या सोचते हैं कि हम कोई भगवान को है ना ब्रह्म ज्योति समझते हैं और वो उसी में समर्पित हो जाना चाहते कि मैं भी उसी में लीन हो जाऊंगा। ये लिखा है ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम यज्ञेनेवोपजुहवति कि वो वापस से ब्रह्म में लीन हो जाना चाहते हैं। अब यहाँ पर दो टाइप के यज्ञ हैं, एक तो वो जो देवी देवताओं की उपासना करने के लिए, और दूसरे जो ब्रह्म के उपासक जो होते हैं, वो दो टाइप के यज्ञ होते हैं। अब जो कर्मयोगी हैं, ये कर्मयोगी जो होते हैं ना वो दोनों टाइप के यज्ञ कर सकते हैं, देवी देवताओं की उपासना भी कर सकते हैं और ब्रह्म में भी यज्ञ कर सकते हैं। तो अभी भगवान ने ये दो टाइप के यज्ञ बताया, और श्रील प्रभुपाद जी कहते कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य तो कृष्ण की प्राप्ति है, तो जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपने सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है वास्तविक योगी तो वही हुआ ना, क्योंकि योग का यज्ञ का क्या मतलब होता है यज्ञो वै विष्णु, कि यज्ञ का मतलब होता है भगवान की प्रसन्नता के लिए या विष्णु की प्रसन्नता के लिए। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, और कुछ निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, इस तरह से यज्ञ करते हैं। तो अलग अलग कोटियां यहाँ पर यज्ञों की भगवान ने बताई हैं, और अलग अलग यज्ञ करने के द्वारा यज्ञ के ये वर्गीकरण बताया है, यानी कि अलग अलग टाइप के यज्ञ बताते। वास्तव में ये सब यज्ञ जो है वो कैसे है कि ये कर्म कांड से आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो भक्ति तक पहुंचना है। तो लेकिन जो डायरेक्ट से भगवान की भक्ति कर रहे हैं उनको इस यज्ञों की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही मुख्य बात बताई, वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु को ही यज्ञ कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को अब यहाँ पर दो टाइप के यज्ञ बताए गए, एक द्रव्य यज्ञ है और एक ज्ञान यज्ञ है ना। द्रव्य यज्ञ क्या होता है, सांसारिक द्रव्यों के लिए, यानी कि जो देवी देवताओं का यज्ञ होता है, पहली लाइन में बताया देवमेवापरे यज्ञम योगिनापर्युपास, तो जो योगी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं उसको कहते हैं द्रव्य यज्ञ, और दूसरा ज्ञान यज्ञ होता है, यानी जो निर्विशेषवादी हैं वे निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं, ब्रह्मा न व परे यज्ञम यज्ञ नोपजुहते, तो अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते। लेकिन देवी देवताओं के द्वारा प्राप्त होने वाली जितनी भी, अभी देवी देवता अलग अलग होते हैं, जैसे इंद्र वरुण चंद्र सूर्य, इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वो यज्ञ करते हैं, और उनकी क्यों करते हैं, ताकि उनकी इच्छाएं भौतिक सुख उन्हें प्राप्त हो, भौतिक कामनाएं पूरी करने के लिए, या ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग लोक प्राप्त करने के लिए। लेकिन ये सब जो भी देवतागण बहुत शक्तिमान है, भले वो बहुत सारी चीजें हमें प्रदान करते हैं, श्रील प्रभुपाद ने बताया ऊष्मा जल और प्रकाश करने, ये सब चीजें भौतिक कार्य की देखरेख के लिए भगवान ने स्वयं उनको नियुक्त किया है। वो अगर आप देवताओं की पूजा नहीं भी करोगे ना तो भी वो उनकी ड्यूटी है, वो भगवान ने उनको नियुक्त किया है तो वो अपना कार्य करते रहेंगे। हमें भी भगवान ने नियुक्त किया है, किस लिए? भगवान ने बताया है कि आपके जीवन का क्या है लक्ष्य, मुझे प्राप्त करना है। भगवान कहते हैं कि इमं प्राप्य भजस्वम अनित्यम असुखम लोकम 9.32। भगवान बताते हैं अनित्यम असुखम लोकम, ये जो संसार है उसमें तुम्हें जो कुछ भी प्राप्त होगा मेरे अतिरिक्त, जो कुछ भी है वो अनित्य है और असुख है। भले आपको दिखता है कि उसमें मुझे सुख मिल रहा है, आपको ऐसा महसूस होता है कि ये भौतिक वस्तु है या भौतिक व्यक्ति मुझे सुख प्रदान करते हैं, लेकिन वो बहुत टेम्परेरी होता है, थोड़े समय के लिए हमें वो सुख प्राप्त होता है। वास्तव में कोई भी चीज जो है वो कभी भी आपको सुखी नहीं कर सकती, क्योंकि आप भौतिक हो नहीं, आप आध्यात्मिक हो और आध्यात्मिक वस्तु को आध्यात्मिक वस्तु ही आनंद दे सकती। तो यहाँ संसार में सब कुछ भौतिक है, तो हमें अगर सुखी होना है तो भौतिक को छोड़कर आध्यात्मिक को पकड़ना होगा। तो ये जो लोग होते हैं जो देवी देवताओं की उपासना करते हैं उन्हें भौतिक, जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वो ऐसे वैदिक अनुष्ठान करते हैं और अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और ऐसे लोगों को ईश्वरवादी कहते हैं। यानी कि बहुत सारे उनके ईश्वर होते हैं, कभी किसी देवता की शरण में, कभी किसी देवता की शरण में, कभी किसी देवता की शरण। जैसे एक भिखारी होता है ना, वो कभी किसी से मांगता है, कभी किसी से मांगता है, कभी किसी से मांगता है, और ऐसे जो जीव होते हैं वो अपने आप को भिखारी बना देते हैं। यानी कि वो क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी किसी देवता की अलग तरीके से पूजा करते हैं, दूसरे देवता की अलग तरीके से पूजा करते हैं, किसी से अलग। उनको केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति से ही मतलब होता है, उस देवता से उसका मतलब नहीं होता। कोई स्नेह होता तो वो कभी भी कोई अपने देवता को चेंज नहीं करता, लेकिन ये बह ईश्वरवादी होते हैं तो हर दिन एक नया देवता उनके पास होता है। लेकिन कुछ लोग दूसरे होते हैं, कौन से, जो दूसरी लाइन में लिखा ना, ब्रह्मा नाव परे यज्ञ यज्ञ नैवोपजुहयते। तो जो ब्रह्म के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त करते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, वो देवताओं के सारे रूपों को अनित्य मानते हैं कि देवता अनित्य हैं, वो तो समाप्त हो जाएंगे, और भगवान को परम सत्य को निराकार मानते हैं। वे ब्रह्म की अग्नि में अपने आप को आपकी आहुति दे देते हैं कि मैं भगवान निराकार है और मुझे भी भगवान के अंदर सायुज्य मुक्ति प्राप्त करके भगवान के अंदर ही समा जाना है। श्री प्रभुपाद जी इसको कहते हैं कि वो अपनी आहुति दे देते हैं। और ऐसे जो निर्विशेषवादी होते हैं वो भगवान की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपना समय जो है वो ज्ञान अर्जित फिलॉसफी में अपना सारा समय लगाते हैं। वो भगवान की प्रेमा भक्ति नहीं करते बल्कि ज्ञान अर्जित करते हैं। और दूसरे जिला प्रभुपाद जी बताते हैं सकाम कर्म क्या करते हैं, भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति को यजन करते हैं, और निर्विशेषवादी क्या करते हैं, पर ब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधि का यजन करते हैं। अब दोनों कर रहे सेक्रीफाई है, अगर देखा जाए तो सेक्रीफाई कर रहे हैं ना दोनों। अब वास्तव में यज्ञ का मतलब ही सेक्रीफाई होता है। यज्ञ का मतलब मूल भाव क्या होता है कि जो वस्तु मैं अपनी इंद्र तृप्ति के लिए अपने भोग के लिए प्रयोग करूं वो मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए उसका त्याग करूं। ना कोई भी वस्तु जो कि अभी देखो समय है या वस्तु है, हम भगवान को दे रहे हैं या स्वयं अपनी इंद्र तृप्ति के लिए रख रहे हैं वो डिसीजन करता है। इसका मतलब है अगर वो अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए नहीं बल्कि किसी भी देवी देवता को दे रहा है या फिर ना परब्रह्म की अग्नि में वो एक तरह से यज्ञ कर रहा है। और जैसे हम जब यज्ञ करते हैं तो क्या होता है, घी होता है, प्रसाद होता है और आहुति होती है, तो उसमें स्वाहा करते हैं अग्नि के अंदर डालते हैं। तो कोई बोल सकता है कि तुम लोग है ना घी है, देसी घी इतना महंगा मिलता है, आप इसको अग्नि में डाल के स्वाहा क्यों करो, जला क्यों रहे हो, उसको खुद खाओ ना और भी ज्यादा अच्छा है, ये क्या कर रहे हो, अग्नि के अंदर डाल रहे हो। लेकिन नहीं, ऋग्वेद में लिखा है देवानाम अवमोग्नि परमो विष्णु तदंतरम सर्व देवता, यानी वास्तव में अग्नि जो है उसको सबसे नीचे कहा गया, मतलब सबसे कम शक्तिशाली। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम शक्तिशाली है, नीचे का मतलब ये है कि ये अग्नि एक ऐसा मतलब देवता है जो हम जहां तक हमारी रसाई, हम जहां तक पहुंच सकते हैं। तो अग्नि को भगवान का मुख कहा गया है ना। अभी देखो हम दूसरे देवता देखा जाए तो इंद्र चंद्र वरुण सूर्य ये हमसे दूर है ना, लेकिन ना अग्नि जो है वो हमारे घर पे होती है तो हम घर पे भी उसका आवाहन कर सकते हैं। तो अग्नि को भगवान का मुख बताया गया है। जब कोई भी वस्तु हम अग्नि में डालते हैं तो उसको जलाकर राख करने के लिए नहीं डालते हैं। जब यज्ञ किया जाता है तो हमारे मन में ये इच्छा होती है कि इस यज्ञ के जरिए मैं भगवान को प्रसाद अर्पण कर रहा हूँ, भगवान को खिला रहा हूँ। तो इस तरह से अग्नि के द्वारा ही बाकी सब देवी देवताओं से हमारा संबंध होता है। देखो क्या बताया, देवानाम अवमो अग्नि परमो विष्णु, सबसे ऊपर तो विष्णु है पर तदनंतर सर्व देवता, उसके बाद समस्त देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो द्वार है वो अग्नि है। तो अग्नि के जरिए ये सारे लोग अलग अलग जीव जो होते हैं वो अपने अपने मत के अनुसार प्रसन्न करते हैं देवताओं को या फिर भगवान की प्रसन्नता के लिए। आगे श्री प्रभुपाद जी ने साफ साफ बता दिया किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है। उसको ये नहीं देखना होता है कि मुझे क्या प्राप्त होगा, वो भक्त क्या सोचता है कि मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कृष्ण का है, और इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्मस्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। उसको ये नहीं देखना होता है कि मैं ब्रह्म में लीन हो जाऊंगा, मैं सारे कार्य छोड़ दूंगा। बस वो अपना मन, अपना तन, अपना द्रव्य, अपनी संपत्ति, इवन अपने आप को भगवान कृष्ण के लिए अर्पित कर देता है। और श्रील प्रभुपाद जी ने बताया वही परम योगी है। किंतु अब उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता, भले वो कितना ही बड़ा योगी क्यों न हो लेकिन वो व्यष्टि आत्मा ही रहेगा, उसका एक अस्तित्व है, वो कभी नष्ट नहीं होगा। क्योंकि वो अगर नष्ट हो गया तो वो भगवान के साथ अपना प्रेम संबंध कैसे कार्य करेगा, प्रेम कैसे करेगा, उसकी सेवा कैसे करेगा। तो उसका जो भौतिक वास्तव में भक्त का जो भौतिक स्वरूप है वो नष्ट भी नहीं होता, वो देवताओं के पास भी नहीं जाता, निर्विशेष ब्रह्म के पास भी नहीं हो जाता। लेकिन ये यहाँ पर भगवान जो है वो अलग अलग यज्ञों के विषय में बता रहे हैं कि किस किस तरह के यज्ञ होते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग श्लोक नंबर 26 में भी जो दो टाइप के यज्ञ बताए, एक ब्रह्मचर्य का और दूसरा ग्रस्त जो लोग होते हैं उनका यज्ञ होता है। तो ब्रह्मचर्य का क्या बताया, श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयम याग्निषु जुहत। वो क्या करते हैं, श्रोत आदीन इंद्रिया, अब इंद्रिया होती है ना जो भी, श्रोत का मतलब होता है श्रवण इंद्रिया, सुनने की इंद्रिया, और आदि का क्या मतलब होता है, जैसे कर्म इंद्रियों की अगर बात करें, ज्ञान इंद्रियों की, आंख कान नाक त्वचा रसना। तो जब कोई ब्रह्मचारी होता है उसकी सारी इंद्रियां कार्य कर रही होती हैं, लेकिन वो कान से या श्रोत का स्पेशली कान के विषय में बताया गया, कान से इंद्र तृप्ति नहीं करता है, बल्कि वो ये नहीं सोचता है कि मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं ये सुनूं, ये अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि एक बल्कि जब ब्रह्मचर्य गुरु आश्रम में जाते हैं और ब्रह्मचर्य आश्रम में वो उनके पास ये मौका होता है, वो अलग अलग चीजें सुन सकते हैं और है ना अलग अलग चीजें इंद्र तृप्ति के लिए उनसे श्रवण। वास्तव में ज्ञान ब्रह्मचर्य जो है वो ज्ञान अर्जित करने के लिए, तो ज्ञान वास्तव में अर्जित होता है कान के जरिए, लेकिन डिसीजन अपना होता है कि मैं किस तरह से ज्ञान प्राप्त करूं। तो यहाँ पर क्या कहा, श्रोतादीन इंद्रियाण्यन्ये संयम याज्ञेषु जुहत, वो संयम करता है, उनको इंद्रियों को खुली छूट नहीं देता है कि हाँ भाई तुम्हें जो श्रवण करना है जाके श्रवण करो, जो देखना है जाके देखो, जो खाना है, लेकिन वो क्या करता है, संयम अग्निषु यानी कि संयमित कर देता है उनको, अपनी इंद्रियों को, और वो कोई चीज नहीं सुनता है, वो कोई कार्य अपनी इंद्रियों के द्वारा नहीं कर रहा है जो कि उसे ना भौतिक स्थिति में और भी डाल देते हैं या फिर बारंबार जन्म मरण के चक्कर में डाल देते हैं, वो उन सबको संयमित करता है। उसके पास चांस होता है, उसके पास स्वतंत्रता होती है, लेकिन फिर भी एक तरह से यज्ञ कर रहा है, तपस्या कर रहा है ना, सेक्रीफाई कर रहा है अपनी भौतिक इंद्रियों को तृप्त ना करके, बल्कि उनको संयमित करता है। और आगे जो ग्रस्त होते हैं शब्द आदि, यानी उनके पास विषय होते हैं, पहले इंद्रियों की बात की थी ना, श्रोत्रादीन इंद्रियां, इंद्रियां कौन सी हैं? आंख, कान, नाक, त्वचा, रसना, ठीक है। और उनके विषय कौन से हैं? रूप, रस, स्वाद, गंध, स्पर्श। अगर देखा जाए तो ग्रस्त जीवन में, यानी विवाह के बाद ग्रस्त जीवन में इंद्रिय सुख की, इंद्रिय सुख अर्जित करने की एक नियमित छूट दी गई है। श्री प्रभुपाद ने कहा वो छूट तो है परंतु नियमित छूट है। लेकिन अगर कोई ग्रस्त उसको संयमित नहीं कर रहा है तो वो उसका दुरुपयोग भी कर सकता है। लेकिन अगर वो नियमित रूप से कर रहा है, जैसे कुछ शब्द आदि विषय अन्य इंद्रियन इंद्रिया नहीं शुरू होती, ये कितना अजीब लग रहा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा, तो इतना ये रहस्यमय लग रहा है कि इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में कैसे स्वाहा करते होंगे। तो वो ऐसे करते हैं, श्री प्रभुपाद ने बताया कि वो संयमित, हालांकि उनको इंद्रिय तृप्ति की इच्छा छूट होती है, लेकिन उसको बहुत ही संयमित कर देते हैं। वो केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही यज्ञ समझकर इंद्रिय भोग करते हैं। तो भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता 7.12 में, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, जो काम धर्म के नियमों के अनुसार है, धर्म के नियमों के खिलाफ नहीं है, वो वास्तव में मैं हूँ। यानी कि वो भगवान ने इतना पवित्र बताया कि वो उसमें अपराध नहीं होता है, वो तो स्वयं मेरा स्वरूप है। इसलिए जो संयमित ग्रस्थी होते हैं वो कभी भी यौन जीवन का मतलब होता है इंद्रिय सुख की सेक्सुअल जो लाइफ होती है वो, और या फिर इंद्रिय तृप्ति के अन्य साधन होते हैं जैसे मांसाहार करना, नशा करना और न परस्त्री संग करना, इनके कार्यों में अनियंत्रण रूप से वो नहीं बैठते, यानी कि हर चीज को संयमित करते हैं। ऐसे ये भी एक तरह का यज्ञ है, क्योंकि जो ये गृहस्थ होते हैं वो उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति दे देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि उसकी इच्छा समाप्त हो जाती है, इच्छा होती है परंतु वो उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कि मेरे जीवन का लक्ष्य, क्योंकि अगर लक्ष्य को आप सामने रखो ना, फिर इंद्रिय तृप्ति बहुत पीछे छूट जाती है। जब हमारे पास इंद्रिय तृप्ति की इतनी ज्यादा अट्रैक्शन क्यों है, क्योंकि लक्ष्य को बहुत लाइट कर दिया और बहुत पीछे कर दिया है, और भौतिक वस्तुओं को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया है, और स्पेशली इम्पोर्टेंट दी है इस भौतिक शरीर को। इस भौतिक शरीर को मैं कैसे सुखी करूं, इसको कैसे ज्यादा से ज्यादा खिलाऊं, इसको कैसे ज्यादा से ज्यादा सजाऊं, ये एकमात्र जीवन का लक्ष्य बना दिया। लेकिन यदि अगर अपने वास्तविक लक्ष्य के मुझे इस भौतिक जीवन से बहुत आगे निकलना है, मुझे उस जगह पर जाना है, यद गत्वा न निवर्तन्ते, उस जगह पर जाना है जहाँ पर कोई भी क्लेश नहीं है, कोई दुख नहीं है, जहाँ से मुझे आना भी नहीं पड़ेगा, और वहाँ पर पहुँच कर मैं अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त कर दूंगा, अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करूंगा। ये चीज को अगर हम ध्यान रखेंगे ना, तो फिर ये भौतिक इच्छाएं, भौतिक जो आकर्षण है वो बहुत कम होता जाएगा। तो अभी भगवान ने इतने टाइप के यज्ञ बताए, और आगे भी भगवान यज्ञों के विषय में बताएंगे, और आगे चल के अर्जुन को बताएंगे कि देखो मैंने तुमको अलग अलग टाइप के यज्ञ बताए ना, लेकिन अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुमको कौन सा यज्ञ करना है। ये तो अभी जैसे देवताओं के विषय में भी बताया, परब्रह्म की अग्नि वाला बताया और ब्रह्मचर्य वाला बताया, ग्रस्त लोग है ना अपने विषयों का त्याग कर देते हैं वो भी यज्ञ बताया। तो आगे भगवान हमें बताएंगे कि हमें यानी भक्तों को कौन सा यज्ञ करना है। तो कृपया साथ रहिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।